ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक को दी स्वीकृति। संसद ने इस विधेयक को इस सप्ताह पारित किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा की। कहा कि अगले वर्ष 31 मार्च से पहले छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश से समाप्त हो जाएगा नक्सलवाद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में अक्षय ऊर्जा से जुड़े 50 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और रामनवमी का पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही यह विधेयक अब कानून बन गया है। संसद ने इस विधेयक को इसी सप्ताह पारित किया था। राष्ट्रपति ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2025 को भी स्वीकृति दे दी है। इस नए कानून के माध्यम से केंद्र सरकार का उद्देश्य देश में वक्फ संपत्ति प्रबंधन के शासन, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण सुधार लाना है। मुकदमेबाजी और न्यायिक निगरानी की कमी जैसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को संशोधित करके यह नया कानून एक जवाबदेह ढांचा बनाने का प्रयास करता है। प्रमुख बदलाव में वक्फ के गठन को फिर से परिभाषित करना, सर्वेक्षण और पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना, सरकारी निगरानी को सशक्त बनाना, वक्फ से संबंधित निकायों में गैर मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं को शामिल करके समावेशिता सुनिश्चित करना शामिल है। ये नया कानून देश में वक्फ संपत्ति प्रबंधन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले वर्ष 31 मार्च से पहले छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने राजधानी रायपुर में कल वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार नक्सलवाद का समूल नाश करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान की गति किसी भी सूरत में कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ जारी लड़ाई में बिखराव नहीं होने देना है। श्री शाह ने कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में भाग रहे नक्सलियों को पकड़ने के लिए राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों में समन्वय और बेहतर होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की जनता को विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। इससे पहले कल छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एंटी नक्सल अभियान के ऑपरेशनल कमांडरों के साथ संवाद करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को हाशिए पर ला दिया है। चाहे भीहड़ जंगल हो या उफनती नदी, चाहे कड़ाके की सर्दी हो या भीषण गर्मी, हमारे वीर कमांडरों ने अपने शौर्य और पराक्रम से करोड़ों जीवन को नक्सल प्रभाव से मुक्त किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचाने के लिए बनाई गई नियत निर्णार को सुरक्षा बलों के शिविरों के 5 किलोमीटर के दायरे से बढ़ाकर 10 किलोमीटर करने को कहा। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ गृह मंत्रालय, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में अक्षय ऊर्जा से जुड़े 50 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके तहत रायपुर में 29 लाख की लागत से सौर ऊर्जा संचालित बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, सामान्य ई रिक्शा को सोलर ई रिक्शा में परिवर्तित करने तथा नियद लेन्नालार योजना अंतर्गत स्थापित 54 सोलर हाई मास्ट, 152 सोलर ड्यूल पंप और 2 सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बिलासपुर, राजनांदगांव और जगदलपुर के ऊर्जा शिक्षा उद्यानों में सौर ऊर्जा से संचालित बैटरी स्वैपिंग स्टेशन की स्थापना कार्य, प्रदेश के समस्त ऊर्जा शिक्षा उद्यानों को नेट जीरो करने, ऊर्जा शिक्षा उद्यान राजनांदगांव के जीर्णोद्धार कार्य का भूमि पूजन किया। क्रीडा सीईओ राजेश सी राणा ने बताया कि सौर संचालित बैटरी स्वैपिंग स्टेशन क्रीडा द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक रिक्शा के लिए विकसित किया गया है। बैटरी स्वैपिंग की मदद से ई रिक्शा चालक कम समय में सस्ते दर पर डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज बैटरी से बदल सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। रामनवमी का पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व भगवान विष्णु के सातवें अवतार भगवान श्री राम के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी चैत्र मास की नौवीं तिथि को मनाई जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं।
मर्यादा पुरुषोत्तम, हमारे छत्तीसगढ़ के खाचा राम के अवतरण दिवस श्री रामनवमी की आप सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।
रामनवमी के मौके पर आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर स्थित राम मंदिरों में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की जा रही है। अनेक स्थानों पर आज शोभा यात्राएं भी निकाली जा रही हैं। राजधानी रायपुर के दूधाहारी मठ मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रामनवमी के पावन अवसर पर राजधानी रायपुर में VIP रोड स्थित श्री राम मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। इस बीच नवरात्रि पर्व के नौवें दिन आज विभिन्न देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर कई जगह हवन, कन्या भोजन और भंडारे का भी आयोजन किया गया। साथ ही बाजे गाजे और जसगीत के साथ ज्योत जवारा विसर्जन भी किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके कड़े परिश्रम, संघर्ष और पार्टी को खड़ा करने के लिए किए गए त्याग के लिए धन्यवाद दिया। श्री नड्डा ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भाजपा को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए धन्यवाद दिया है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने रायपुर स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाउ ठाकरे परिसर में स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी का ध्वज फहराया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन भी किया। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जगदलपुर में पार्टी का ध्वज फहराया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई भाजपा के स्थापना दिवस और भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज से 14 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इस दौरान पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आज भाजपा के स्थापना दिवस पर बूथ कार्यालयों और घरों में पार्टी का झंडा फहराया। 8 और 9 अप्रैल को सभी मंडल और विधानसभा स्तर पर सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन रखा जाएगा। वहीं 10 और 11 अप्रैल को ग्राम, बस्ती और बूथों पर घर घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान भाजपा की विकास यात्रा के साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। बीजापुर जिले के अति सुदूर गांव तिमेनार में मुख्यमंत्री विद्युतीकरण योजना के तहत आजादी के 77 वर्षों बाद पहली बार बिजली पहुंची है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि माओवादी आतंक के अंधकार को चीरकर विकास, अमन और शांति के नए सवेरे की ओर कदम बढ़ाने का प्रतीक है। पेश है हमारे बीजापुर संवाददाता की एक रिपोर्ट।
बीजापुर जिले के तिमेनार गांव में अब भय की जगह उजाला और आतंक की जगह उम्मीद ने ली है। गांव के 53 घरों में 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया गया है, जिससे पूरे गांव में हर्ष और उल्लास का माहौल है। ग्राम पंचायत बेचापाल के आश्रित गांव तिमेनार के निवासी ने बताया कि पीढ़ियों तक उन्होंने बिजली की रोशनी नहीं देखी थी। मुख्यमंत्री विद्युतीकरण योजना से उनके जीवन में उजाला आया है।
अभी तो लाइट आ गया तो ठीक है, एकदम खुशी खुशी लग रहा है, पड़े उड़े सब चल रहे हैं, अभी शासन को लिए धन्यवाद।
वहीं जिले के कलेक्टर संबित मिश्रा ने बताया कि तिमेनार गांव के 53 घरों में बिजली पहुंच गई है। उन्होंने बताया कि 50 से अधिक ऐसे गांव है जहां बिजली पहुंचाने का काम चल रहा है।
इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो है तिमेनार गाँव, वहाँ के 53 घर में रोशनी आ गई है। पूरा प्रयास है कि बाकी सभी गाँव जिसमें अभी तक बिजली नहीं पहुँची है, जल्द से जल्द क्रमबद्ध तरीके से वहाँ भी बिजली पहुँच जाए। तिमेनार गांव में जो काम हुआ है वो मुख्यमंत्री मद्रा टोला योजना के अंतर्गत हुआ है। इसके अलावा भी विद्युत विभाग से नियर जनरल गांव के लिए स्पेशल SCA के माध्यम से भी और बाकी अन्य योजनाओं से भी हर गांव को कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार काम चल रहा है, 50 से ज्यादा गांव में अभी कंटिन्यूसली काम चल रहा है, सैंक्शन हो चुका है और जल्द से जल्द वहां पे भी बिजली पहुंच जाएगी।
तिमेनार में हुआ विद्युतीकरण बस्तर के दूरस्थ अंचलों में सुशासन और विकास के नए युग की शुरुआत का संकेत है। आकाशवाणी समाचार के लिए बीजापुर से मैं के संतोष कुमार।
और पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका पूर्वी बिहार से छत्तीसगढ़ होते हुए पूर्वी विदर्भ तक विस्तारित है। साथ ही एक द्रोणिका मराठवाड़ा से उत्तर तमिलनाडु तक बनी हुई है। वहीं एक चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर तक विस्तारित है। इसके प्रभाव से एक निम्न दाब का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि 8 अप्रैल से प्रदेश के अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर शुरू होने की संभावना है।
प्रदेश में अगले 24 घंटे में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि होने की संभावना है। 8 अप्रैल से अधिकतम तापमान में गिरावट का दौर प्रारंभ होने की संभावना है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक को दी स्वीकृति। संसद ने इस विधेयक को इसी सप्ताह पारित किया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति की समीक्षा की। कहा कि अगले वर्ष 31 मार्च से पहले छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश से समाप्त हो जाएगा नक्सलवाद। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने रायपुर में अक्षय ऊर्जा से जुड़े 50 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। और रामनवमी का पर्व आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।